कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
तो सतलोक में ऐसे है, वहां ना कोई भाई बंटवारा, ना किसी चीज का अभाव, सबको एक जैसा वहां पर मकान है, एक जैसा सब आहार खाने को है, एक जैसा व्यवहार है। तो वहां ना द्वेष है, ना राग है, और ना ही किसी प्रकार का और विकार है। अब जैसे छोटे बालक होते हैं, 2, 4 साल के, 5 वर्ष के, उनमें किसी प्रकार की वासना नहीं होती, उनमें बिल्कुल ही नहीं होती। और कितना अच्छा उनका जीवन होता है, कितना उनका जो है ना सुख होता है उन बच्चों को, अब उस जीवन में ही हम महसूस कर सकते हैं। उसके बाद जितने युवा होते चले जाते हैं, ये विकार आग लगाते चले जाते हैं, इस जीव को 24 घंटे बेचैन रखते हैं। ऐसा भाव वहां रहेगा जो सतलोक के अंदर, कोई विकार आवे को ना, इस प्रकार का शरीर है और हर तरह की सुविधा वहां पर उपलब्ध है। तो उसको कहते हैं सुख का सागर। सुख सागर की परिभाषा थोड़ी सी बताते हैं। जैसे कई बार इस दास के साथ तो बहुत बार बनती है ऐसे, और ये कभी आपके साथ भी बनी होगी, अकेले बैठा हो, कभी कभी एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, कोई भी पराया नहीं लगता, ना कोई शत्रु महसूस होता, कितना ही निकम्मा व्यक्ति, कितना ही दुख दे रहा हो अपने को, उसके प्रति भी एक बहुत अच्छा प्रेम जाग जाता है, द्वेष नहीं रहता। इस दास ने बहुत बार महसूस किया है ये, उस समय कोशिश करने से भी उसके प्रति द्वेष नहीं बनता। वह मेहर की लहर थी, मेहर यानी सबके ऊपर रहम की लहर थी, और वो होती है 1-2 मिनट की मुश्किल से, और फिर वही बात न्यो की न्यो, वही न्यो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वो नुकसान हो गया, फलाना हो गया, वो कहर की लहर फिर शुरू होगी। तो क्या बताते, संखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी ही सुख का सागर सोई। संखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, यानी वहां ऐसी हिलोर उठती हैं, शंखों ऐसी प्यार की लहर, ऐसी रहम की लहर, असंखों उठती है शंखों, और कहर नहीं जा कोई, किसी प्रकार का आत्मा में दोष नहीं होता, ना कोई दुख होता, उसको सुख सागर कहते हैं, वो स्थान सुख सागर है। तो यहां परमात्मा कहते तुम सतलोक में रहा करते थे, तुम इस देश के रहने वाले नहीं हो, यो गंदा लोक है। अपुण आत्माओं, कई अनाड़ी व्यक्ति होते हैं बिना ज्ञान के ये कह देते हैं, यदि सारे भक्ति कर लेंगे और सभी सतलोक चले गए तो पृथ्वी खाली हो जाएगी, तो पृथ्वी खाली हो जाएगी, पड़ी रहेगी, हमने फूकनी है पृथ्वी, बता इसमें इतने बूंदे कष्ट, ये कोई नो कह वे सारे सुधर गए तो जेल खाली हो जाएगी। तो ऐसी थ्योरी है उन लोगों की कि जब सारे ही आदमी सुधर गए फिर जेल खाली हो जाएगी, आग लगे उस जेल का, जेल तो मजबूरी की है, जो कि तभी ना टिकते उन्हें जेल में डाल दे, पड़े रहे निकम्मे हुए। तो सुधर गए थे, फिर जेल की आवश्यकता ही क्या है, पड़ेगा और बना देंगे कि व्यवस्था। तो ऐसे व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति सामने लिया इस दास ने, काफी देर सत्संग सुनता रहा, सृष्टि रचना सुनाई इस दास ने, तो सारा ज्ञान सुनकर 2 घंटे पाचन्यो बोला, महाराज जी मैं तो कति नाम नहीं लूं आपका। पहले थोड़े थोड़े भगत होते थे, प्रत्येक के साथ ऐसे ही संघर्ष करके उनको मार्ग पर लगाना पड़ता था। मैंने कहा भाई के बात तो बड़ा ध्यान से सुन रहा था, सत्संग मन तो ऐसा लगा था भाई जानो बात बनेगी तेरी। ने बोला जी ज्ञान आपका सच्चा होगा, लेकिन आज तक किसे नहीं बताई यह बात, और आप ऐसे ढंग से बता रहे हो कि दिल में जच्चे है पक्की कि वहां कुछ ना कुछ है, पर मैं हूं दुन का पक्का, मैं जिस काम में लग गया करूं उसने पूरा करके छोड़ दिया करूं, और मैं आपका नाम ले लूं और मैं डट के भक्ति करूंगा, कहीं मैं अकेला वहां पहुंच जाऊं, वहां कोई भी ना पावे और मेरा दिल नहीं लगे, मैं कत्ती नाम नहीं लूं। मैंने उनसे कहा भले आदमी ऐसी तो कोई बात नहीं है कि वहां तो सृष्टि और भी बहुत है पहले की है, और फिर मैं बोला भी चल यहां तेरा केजी लाग रहा है तो तू मनुष्य है, और कल न तो कुत्ता बन गया गधा बन गया, पता के टट्टू जी लगेगा यहां पर। नो बोला कोई बात ना, घूमते फिरते देखे जाएंगे जी लग गया रहेगा, हमारी इतनी वृत्ति गिर गई कि गधे बनकर कुत्ते बनना मंजूर है, अड़गे शहर से पट्टे छूटते को। तो हम अध्यात्म ज्ञान में इतने पिछड़ चुके हैं, अब -0 में भक्ति थी जब इस दास ने यह मार्ग शुरू किया परमात्मा कबीर जी गुरु जी की कृपा से, और इतना संघर्ष 15-16 वर्ष हो गए इस दास ने, गला भी कंडम हो लिया, शरीर भी दिन रात सत्संग, फिर शास्त्रों को पढ़ना, सत्संग करना, पाठ करना, चलना बोलना, जब जाके या थोड़ी सी भूमिका बनी है सत्संग की, अब संगत परमात्मा की जोड़न लगी है। ये दास अकेला है जो संग करता है, और पूरी पृथ्वी पर सब कुसंग को गलत ज्ञान का प्रचार करके काल के जाल में फंसा रहे हैं। इस दास का इस पृथ्वी पर केवल एक सत्संग और इसके विरुद्ध बोलने वाले करोड़ों और लाखों, और फिर भी इतनी हमें सफलता मिली है, यह कबीर परमेश्वर जी की कृपा है, और इस सच्चे ज्ञान और सच्चे तत्व ज्ञान की अपनी जो महिमा है जिस कारण से हमें असफल। तो क्या बताते हैं, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और ना ऐसा यसरे, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और ना ऐसा यसरे। अब क्या बताते हैं, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजीव जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। परमात्मा कबीर जी परमेश्वर स्वयं आते हैं सतलोक से चलकर, अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान बताते हैं, क्या कहते हैं, क्या मांगू कुछ स्थिर न रहाई, उन आत्माओं जिसका संतान नहीं है वो केवल 1 करोड़ लाख है, महाराज जी मारे बालक को ना, महाराज जी मारा संतान को नहीं, 5 साल हो गए, 6 वर्ष हो गए ब्याह हो, किसी के कोई पैसे का अभाव है तो उन्हें कहे जी पैसे की बहुत कमी है, कर्जा बहुत हो गया, जितनी बार भी आते हैं बेचारे यही प्रार्थना करते हैं। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं, अप आरती अप साजे अप किंगर अप बाजे अप ताल झांझनकारा आप नचे आप देखना, अपने ऊपर आप ही उदाहरण देते हैं भगवान, कहते हैं क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती उस रावण काज दीवान बाती। कहते हैं तुम मान लिए 1 संतान मांग लोगे, 1 पुत्र, क्योंकि पुत्र की गणी जरूरत मान रहे हैं आजकल, मान ले तुझे 1 पुत्र देवी देगा परमात्मा, तो केकला टूट गया। कहते रावण के 100,000 बेटे थे और सत भक्ति ना करने से कहते 100,000 का बाप था गया जगत में ऊत, यानी उसी की आंखों के सामने 100,000 के 100,000 मृत्यु को प्राप्त हो गई। एक व्यक्ति बता रहा था, जी मेरे 4 लड़के थे और 4वां की शादी कर दी, 2 की शादी कर दी, 2 की करी नहीं थी और 4 वर्ष में 4 मर गए। लड़की के लड़के ने ले रहा, दोते ने बोला इस पर आस लगा रहे, मैं उन 4 तक काट दी टाट। तो इतनी बुद्धि गिरी हमारी कि छोरी का लड़का ले रखा है और छोटा 2-4 साल का होगा, कहले इस पर आस ला रखी है, यो हमने सुख देगा। परमात्मा कहते हैं के मांगू कुछ ठिर ना रहा, ये देखत नैन चला जग जाई। 1,00,000 पूछ 1,25,000 नाती उस रावण का, उसको दीवान बाती को दीपक लनिया को न्याज उसके, इस गंदे लोक में तुम मांग क्या रहे हो। परमात्मा कहते हैं के मांगना चाहिए, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलू नहीं कर हूं पग सेवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलू नहीं कर हूं पद सेवा हो, तीर्थ व्रत मैं ना करूं ना मंदिर पूजाओ, तीर्थ व्रत मैं ना करूं ना देवल पूजाओ, मनसा वचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भोलू नहीं कर हूं पद सेवाओ, अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो, अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो, सो मैं तुमसे ना मांग हूं सब थोथरी आशा हो, सो मैं तुमसे ना मांग हूं सब थोथरी आशा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया बोलू नहीं कर हूं पद सेवा हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, स्वप्न में इच्छा ना करूं गुरु आने तुम्हारी हो, स्वप्न में इच्छा ना करूं गुरु आने तुम्हारी हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं कर हूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं कर हूं पद सेवा हो, धर्म दास की विनती समरथ चित दीजो हो, धर्मदास की विनती समरत चत दीजो, ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो, ये आवन जावन निवार के अपना कर लीजो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलू नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया बोलू नहीं करहूं पद सेवा हो, धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो, धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो, आवण जावण निवार के अपना कर लीजो हो। ये धर्मदास जी एक मध्य प्रदेश में बांधोगढ़ शहर था बहुत बड़ा, और ये बहुत बांधोगढ़ के अंदर एक बहुत रहीस परिवार में जन्म था, वैश्य कुल में बनिए के घर जन्म था धर्मदास जी का। हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण सभी देवी देवताओं व्रत तीर्थ आदि की करता था, मंदिरों में जाता था, तीर्थों पे जाता था, एक गुरु जी भी बना रखा था। परमेश्वर इनको मिले थे जाकर के कबीर जी, जैसे कल आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 मंत्र नंबर 26-27 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1-2-3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 16-19-20 तक ये विवरण है इस परमेश्वर कबीर जी के बारे में कि वो कबीर परमात्मा शिशु रूप धार कर सतलोक से आता है, और जब ये एक साधारण मनुष्य की जब लीला करता है प्रत्येक युग में तो बालक रूप धारण करता है, और सतलोक से चलकर आता है वो परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है, उस मुक्ति धाम में रहता है, वहां से गति करके अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को जो दृढ़ भक्त है उनको मिलता है, उनको ज्ञान से परिपूर्ण करता है, तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, तो वो कबीर परमात्मा है। तो वो भगवान, वो कबीर भगवान इस धर्मदास जी को मथुरा में मिले थे। ये वहां तालाब में नहान होकर निकले बाहर, तब इनको इस तत्व ज्ञान से परिचित कराया। काफी इसने बहुत प्रश्न उत्तर किए, बकवाद भी करी, क्योंकि सभी ऐसे करते हैं, पुराने रंग में इतने रंगे जाते हैं, सत्य ज्ञान को आंखों देख कर भी स्वीकार करने दिल नहीं करता, कुछ दिन तो ऐसा रहता है। जब इसको तत्व ज्ञान हो गया कि सचमुच हम तक गलत स्थान पर फंस गया, ये तो कुछ भी को नहीं अपना, तब जो कहा था भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, परमात्मा ने कहा था ना ते मंदिर पूजना ना कोई देवी देवताओं की पूजा करनी, क्योंकि ये मोक्ष नहीं होगा इससे। तो कहते हैं जन्म पाया ही बोलो नहीं कर हो पद सेवा हो, पद माने यानी शास्त्र अनुकूल साधना पद्धति, आपके द्वारा दिए गई जो मार्ग विधि है पद्धति है उस पर ही मैं भक्ति करूंगा। कहते तीर्थ व्रत ना करो ना कोई देवल पूजा हो, किसी मंदिर में भी नहीं जाऊंगा दाता, और मनसा वाचा कर्मणा मेरा और नहीं दूजा हो, आपके अतिरिक्त मैं किसी को नहीं चाहूंगा प्रभु। कहता अष्ट सिद्धि और नौ निधि ना बैकुंठ का वासा हो, आठ सिद्धि या भगवान शिव जी के पास अष्ट सिद्धि है और नौ निधि, और इन आठ सिद्धियों को पाकर ये भगवान की संज्ञा में माना जाता है, जैसे हम मानते थे, आप भी मानते थे पहले इनको। तो परमात्मा ने कबीर जी ने बताया कि ये आठ सिद्धि तो कुछ भी गोना है, जैसे इन साधनाओं से करके ये एक एक सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, जैसे एक ने सिद्धि कर ली जल के ऊपर के ऐसे चल पड़ता है जैसे थल पे चलता है, अगस्त ऋषि ने सिद्धि प्राप्त कर ली, एक अड़दी की गांठ प्राप्त करके महर्षि को आ गया, सातों समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया और फिर वापस कर दिया। तो इस तरह की सिद्धियां से कहते हैं अमन जरूरत को न। परमात्मा कहते हैं जो मंत्र हम आपको देंगे इसमें आप में 24 सिद्धि आ जाएंगी। तुम अठ बगाटा जोड़ रहे हो, 24 सिद्धि आ जाएंगी, पर इन 24ों को छूना नहीं, ये शत्रु है तुम्हारी, इनको नहीं छूना, ये बाई प्रोडक्ट है सत्य भक्ति का, इनके उलझना नहीं। कौन कौन सी सिद्धियां बताई है वो, शबद महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़ बिस्वे बीसा। इस हमारे मंत्र में शब्द में जो सार नाम आपको दिया जाएगा इसके अंदर कहते 24 सिद्धि आ जाएंगी और ये सिद्धि आपको भगवान से दूर करेंगी। अब पुण्यात्मा आप देखना, ये ऋषि महर्षि इन सिद्धियों के कारण ही महर्षि को आगे, पर इन दुर्खख नहीं था क्योंकि इनके पास सतभक्ति नहीं थी, भांग बो रहे थे, सिद्धि तो भांग है जिसने पी ली हो, पड़ारा की तक गर्मी या चाहे सर्दी हो। क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिस्वे बीसा। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर ध्यावे, एक सिद्धि जो सब गठ छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि पर लोके वासा, एक सिद्धि कष्टन जारे, एक सिद्धि तन हंस निहारे, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि जो बहुचोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचारे, एक सिद्धि पांचों तत नीरम, एक सिद्धि जो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि जो ब्रह्मंड चलावे, एक सिद्धि सब नाव मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले, 24 को ना मन चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटराणी, सतलोक की कहूं निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस देखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब गरीबदास साहिब जी परमात्मा कबीर जी के सतलोक से और उनकी महिमा से परिचित होने के उपरांत वह आंखों देखने के बाद बता रहे हैं कि कबीर परमात्मा के सार नाम के अंदर ये 24 सिद्धियां आ जाती है और इनके ऊपर जब तेरा जरा सा भी आसक्तता होगी तो फिर भगवान से दूर हो जाओगे, अभिमान आ जाएगा। जैसे क्या क्या बताए हैं, एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे। एक सिद्धि होती है कि आप किसी के पास गए, उसने असिद्धि कर रखी है, आपके मन की बात बता देगा। एक बार हमारे ताऊ के लड़के की भैंस खूगी, चोरी होगी रात को लेगा, उसके लिए मेरे पिताजी ताऊ जी और 5-7 भक्त एक बुज्जा पड़वाने वाले दौर गए, ये जो बुज्जा पाड़ते, और इनके मन में एक आदमी पर शक था। उसने कहा भी तुम जिस पर शक करते हो ना उस आदमी का नाम की पर्ची लिख दो और 10 और लिख दो। तो इन्होंने उसका नाम भी 10 और लिख दी और वो डाल दी। उसने वह पर्ची उठा दी कि इस आदमी ने चोरी कर रखी, क्योंकि उनके जो मन में सोच थी वह उसने मन की वृत्ति बता दी। तो उन्होंने आके पुलिस को, घरवालों ने बता दिया भाई यू आदमी चोर है। पुलिस ने पूछताछ की, पुलिस ने खूब इंक्वायरी करके कहा भी ये चोर नहीं है। फिर उन्हें शक होया भाई दूसरा आदमी पे कि यू हो सके, फिर उसका शक करके फिर चले गए दूसरे के पास, बुज्जा काटने के पास। उसने भी ऐसे ही कहा और उसने वह पर्ची निकाल दी जो दूसरे पर शक था, बोले यू चोर है। फिर गरवाला नाग पुलिस तो फिर बताई वे हमने मारा यू चोर है। उन्हें फिर इंक्वायरी की नोवेलावर नहीं यू भी चोर नहीं है, वो मेज तो नहीं मिली। तो कहने का भाव ये है कि एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, और मान लीजिए किसी का तुक्का लग भी जाता है कि जो सोच कर जाते हैं और वो चोर पा जाए और वह पर्ची उसने निकाल दी अल्ले उससे वो प्रभु पा गया। मान लिया सिद्धि उसमें सह भी तो के किला टूट गया गधा बनेगा। फिर हमारे गांव में एक बैल आ रहा था। ये बैल होता जिसके एक आधा अंग एक्स्ट्रा होता है, और वो क्या करता है तो वहां क्या बता रहे थे, हम खड़े हो गए चारों तरफ घने आदमी, हम छोटे छोटे थे नो देखने खातिर, ने बोले भाई यो बैल है थारे मन की बात बता देगा और बहुत कुछ बता देता है। एक ने बोला भाई नो पूछ दे तेरे बैल पे कि किसकी पत्नी कहानी है। वहां एक खड़ा था उसकी पत्नी कहानी थी, उसने नो घूम गाम कर सारे गए उसका जाजी बुलाई कि यू है, सारे हंस के पड़े बस सच्ची बता दी बैल ने। अब वो फिर बैल बनेगा वो जो आत्मनिवृत्ति, क्योंकि पिछले जन्म में ऋषि था और ऋषि रूप में उसने ये डले डोए सिद्धि प्राप्त कर ली मनवृत्ति बताने की, और ऋषि वाले जीवन ने खो गया अगला मनुष्य जीवन खो दिया ये बकवाद करण में झाड़े जूड़े लाण में, और अगले जन्म में फिर बैल बन गया। ये वो कहानी पत्नी बतावे है अंडे का धक्के खंदा फिर गधा बनेगा फिर कुमार बताओगा उसने। तो परमात्मा के ज्ञान के बिना ये ऋषि महर्षि नौ डले डोगे। अब अगस्त ऋषि की इस बात महिमा बनेगी कि उसने एक घूंट में सागर पी लिया पूरा समुद्र सातों समुद्रों को और कुरला कर दिया फिर हो गया ऐसे। यो तो एक जादूगर कर देता है। हमने देखा एक छोटा सा कंचा मुंह में डाला है एक गोली सी जादूगर, और थोड़ी देर में ओड पत्थर आ ओड पत्थर काट के गिर दे, बताइए कोई बात हुई। तो इसे खेल है ये सागर पी लिया उल्टा छोड़ दिया, ये तो बड़का के खिलौने थे, ऋण तो ये ऋषि पा करे थे। जब ज्ञान हो जाता है ना तब क्या कहते हैं, हे भगवान मुझे तो आपकी सत भक्ति दे दो, मैंने और किसी चीज की आवश्यकता को ना। फिर परमात्मा कहते क्या मांगो कुछ थिर ना रहा ही, देखत नैन चला जग जाई, एक लख पोत सवा लख न थी उस रावण काज दीवान भरती। एक सिद्धि निस्वा सर जागे एक सिद्धि सेवक हो आगे, दिन रात जागने की भी एक सिद्धि हो जाती है। एक नेकी राम नाम का कोई संत था गीसा पंथ से, गीसा दास जी जो उपदेश को परमात्मा मिले थे उनका शिष्य था, लेकिन उन क्रियाओं को ना करके उसने मनमुखी साधना करता रहा, तो उसमें एक सिद्धि आ गई दिन रात जागने की। और एक गांव है खेड़ी दमकन, इस दास के मामा जी हैं वहां नानके, तो वहां हम जाते थे, वहां एक आश्रम बना हुआ है नेकी राम जी का खेड़ी दमकन जिला सोनीपत गोहाना तहसील में। तो न्यू बता करते मेरे मामा जी और वो वहां के सभी व्यक्ति के नेकी राम जी यहां आकर बैठे थे, जंगल सा था जहां वो आश्रम बना छोटा सा बना रखे मकान सा, और वो सारे दिन रात जागया करते। एक ने बताया भाई यू महाराज जी सोता को नहीं, तो और व्यक्तियों ने छुप छुप कर सारी सारी रात देखा, ने बोले 15 दिन देखते रे कति नहीं सोया, बस पूरा गांव उसके ऊपर आसक्त हो गया, वहां उसका मंदिर आश्रम बना दिया और उसकी पूजा शुरू कर दी। बता कोई बात, ये घोड़ा सारे दिन खड़ा रहे कति नहीं सोता। तो ये इस तरह की बकवादों से हमने इनको ऋषि संत महंत मान लिए, अपने भी कर्म फोड़ गए वो हमने भी बर्बाद कर गए। एक सिद्धि जल डूब न जाई एक सिद्धि जल पैर न लाई, बताई से इसे। अब परमात्मा किन्ने हमारे मोतियाबंद हटा दिया जब ज्ञान हुआ। एक सिसाना गांव है सोनीपत जिले में, सिसाना खरखोदा रोड पर रोहतक से खरखोदा रोड पर, और उसमें एक गीसाई पंथी था वो भी, लेकिन फिर ये बकवाद करने लग जाए आप अपने मनमुखी साधना करते हैं। तो उसने नारायण महाराज जी का आकर नारायण नाम तो उसका और था, उसकी के महिमा बना रखी है कि यो एक तालाब में बड़के बाहर निकलिया इसके पैरों का पानी ना लग गया, पैरों का पानी नहीं लग्या, इससे बात तय महाराज पाक गया और उसका इतना बड़ा मंदिर बना रखा नहर के ऊपर बहुत गुना, बता पैरां का जल ना लग गया, तेल ला लो अच्छा हा सरसों का तेल और कितना अंडे जाओ कती पानी ना लगे। अरे इस तो वो संत मान लिया और ऊपरों ने कितनी दुनिया उसका पीछा और ये मूर्ख बना दी। एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। दो संत थे, एक सिद्ध पुरुष के चेले सिद्धि प्राप्त की के उपलक्ष में वो मतलब मोक्ष के लिए निकलते हैं, लेकिन जैसा गुरु मिल जाए वो वैसे तरीका बता देता है तो शेष बेचारे वही साधना पर लग जाते कि उनको पता नहीं होता भी और साधना कौन सी है। तो दो अच्छे मित्र थे, वो एक सिद्ध के चेले हो गए, सिद्धि प्राप्त कराने वाले के। वो सिद्ध कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु होगी तो उस आश्रम को छोड़कर वो दोनों अलग अलग दिशा चले गए, अभी सिद्धि प्राप्ति कराएंगे। तो एक को तो मिल गया कबीर परमात्मा, परमेश्वर जी का ज्ञान बताने वाला कबीर जी का कोई संत नुमाइंदा। तो उसको बताया बेटा यह सिद्धि सिद्धि कुछ ना है, काम खा डले ढोरे हो, सत भक्ति कर अपना कल्याण करवा ले। उसका वो ज्ञान समझ में आ गया, उसने वो सिद्ध वाला मार्ग त्याग दिया, तपस्वी वाला। तो 12 वर्ष के बाद कुदरती ऐसा हुआ, एक कोई समागम था वहां पर, वो दोनों इकट्ठे हो गए। एक तो सिद्ध के दोनों चेले थे वह, एक तो सिद्धि ही करता रहा, एक ने सत भक्ति शुरू कर दी। वो दोनों मिले, पहचाना एक दूसरे को, कुशल मंगल पूछा, अपनी अपनी उपलब्धियों के बारे में जिक्र चला। जो कबीर साहेब जी की शरण में आ गया था, वो पहले डले डोए था, सिद्धि के लिए घूम रहा था, उसने कहा भी मुझे तो बहुत कुछ प्राप्ति होगी, मुझे सत भक्ति मार्ग मिल गया। तो उस सिद्ध ने तो वो दोहना ज्ञान घोट रखा था, क्या कोई सिद्धि हुई तुझे? तो कबीर पंथी जो हो गया था उसका मित्र, वो कहने लगा हमने सिद्धि की आवश्यकता ही ना रही, मिला कोई बात करता है, मैं दिखाऊं मुझे कैसी सिद्धि होगी कि दिखा भाई। वो दरिया सारे बैठे थे किनारे पर, तो दरिया के ऊपर ऐसे चल पड़ा वो सिद्ध उसका मित्र, जैसे पृथ्वी पर चलते हैं, प्रलय किनारे चला गया और फिर वापस आ गया और अकड़ के कहता देखा देखा। उसका मित्र जो कबीर पंथ में शामिल हो गया था, वो कहने लगा देख लिया भाई, 12 साल में तूने 2 अन्य की कमाई करी, एक अन्य में किश्ती वाला ले जा प्रलक अन्य और एक अन्य में नौका वाला वापस ले आवे, ये 2 अन्य कमाई करी तूने 12 साल में, और इससे क्या करेगा तू मरेगा जब क्या पत्रा करेगा, फिर तू मुर्गा ही बनेगा। वो बोला मुर्गा ही तेरे जाइए इस पानी को पर नालायक। फिर उसकी आंख से खुली, भाई क्या बोल रहा है क्या कह रहा है, हर बात भी सच्ची, 12 साल में 2 अन्य कमाई करी, फिर सारा ज्ञान समझा, फिर उसने भी वो अपना दिशा बदल ली। तो पुण्यात्माओं ज्ञान से जानकारी होया करती है। हम पहले जिस ज्ञान को फाइनल मान रहे थे वो फाइनल नहीं था, लेकिन हम मान चुके थे। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी में पता लग गया कि वो त्याग दिया फिर हमने तुरंत, तो वो समझदार व्यक्ति होता है। अब परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कानू। पुण्यात्मा आत्मा जब से परमात्मा से विमुख हुई है, सतलोक को त्याग कर इस गंदे लोक में आई है, उसके तुरंत बाद इसको अपनी भूल का एहसास हो गया था और उसी दिन से अपने भगवान की तलाश में लगी है, खोज कर रही है। अब काल भगवान पूरा विलियन है, ये खलनायक है, इसने उसी दिन से हमें मिसगाइड करना शुरू कर दिया। जैसे बच्चा मां के गर्भ में होता है, इसको सारी याद होती है तू कौन से जीवन में पहले था और के गलती तूने की जिस कारण से तू फिर दोबारा जन्म में आ गया, और बाहर आते ही ये तुरंत भूल जाता है। ऐसे ही सतलोक से जब हम आए, हमें पूरा ज्ञान था हम कौन से हैं, कहां के रहने वाले हैं, इस लोक में आते ही हमारा भूल पड़ गई और इस काल ने ऐसा गलत ज्ञान हमारे अंदर फीड करवा दिया, आप अपने पुत्रों द्वारा अपने इस नकली संत ऋषि महर्षि बनाकर हमारे को अपने भगवान से कति अपरिचित करवा दिया। और हम किसने भगवान मान लाएंगे, गणेश जी ने इतना लंबा नाक सूंड सकल न अकल न के यो भगवान, फिर हनुमान जी भगवान, और चार ईंट लादी नो को यहां भी मत भगवान नो करण लाए गए। यानी कहां ला छोड़ा हमारे को ब्रह्मा विष्णु महेश सुप्रीम पावर। और जबकि इनकी हिस्ट्री में लिख रखा कि ये तो जन्म मृत्यु के अंदर है ब्रह्मा विष्णु महेश भी। अपुनात्माओं, सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज हिंदू समाज में ये आएगी, जब न्यू कह दिया जाए ब्रह्मा विष्णु नाशवान है तो 100 पे सुई जाती है। दास को बिटर एक्सपीरियंस है इस मार्ग का, क्यों जहां भी हम जिक्र करते थे परमात्मा के आधार से बताते थे तो सामने वाला सुनते सुनते एकदम लाल हो जाता था, ये कहां से ले आया तू ज्ञान, ब्रह्मा विष्णु महेश को नाशवान बताता, तेरी अकल कहां जा रही है। हम एक बार बोलते वो 6 बार सुनाते हमने, बता फिर ऐसे कठिन परिस्थितियों में इस ज्ञान को अर्जम समाना, ये तो कुनीन जैसी कड़वी लगती है। लेकिन अब हम शिक्षित हैं, सदग्रंथों से परिचित हैं, जिन सदग्रंथों में हम इनकी हिस्ट्री मानते थे, जीवनी मानते थे, आज उन्हीं जीवनी को हम पढ़ रहे हैं, और जो परमात्मा 600 वर्ष पहले बताया करते वो हम आज देख रहे हैं कि वही साची थी, ये हमें लोक वेद सुनाकर गलत ज्ञान बताया गया था। तो यहां ये शब्द ने कहा है दास ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हम भगवान मान्या करते और इनको अजरो अमर मानते थे, ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सुप्रीम पावर नहीं है, ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री है। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए सदग्रंथ का सहारा लेना अति आवश्यक है, क्योंकि ये परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा, टीवी चैनलों पर भी चलेगा, तो वहां पुण्यात्मा काल प्रेरणा से गलत ज्ञान के आधारित ये शब्द सुनकर विदिक ना जा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान, बंद कर दे टीवी ने। एक बहन बता रही थी कि मेरे को मेरी सहेली ने आपका नाम ले रखा था और उसके ज्ञान से मैं काफी प्रभावित हुई। उसने कहा कि गुरु जी का शाम के समय सत्संग आता है, एक केबल पर चलवाया करते हैं, तो उसने केबल ऑन किया, उसमें यही प्रकरण चल रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। ने बोली मैंने जब मैं टीवी ऑफ कर दिया, ये किसका गुरु संत से ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा नाशवान है, कति नहीं खोला कई जनता ही। तो फिर मेरी सहेली ने फिर पूछा कि तू सत्संग सुनती है कि ना, मैं ना सुनती सत्संग तुम्हारे गुरु जी का, वो तो ऐसे कहते हैं ऐसे कहते। फिर उस बहन ने एक पुस्तक दी मेरे को, वो पुस्तक मैंने शुरुआत से शुरू की, धीरे 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 पढ़ू, कभी गुस्सा होए कभी छो उठे कभी सच्ची जचे, फिर सदग्रंथ मिलाऊं सारे सच्ची पावे, फिर धीरे धीरे यह बात सुहाई और आज नाम लिया उस बहन बेटी ने। तो ऐसे है इस काल में हमारे को इतना मिसगाइड कर रखा है कि सच्ची तो कड़वी लग गए और वह झूठी बात हमें सुहा रही है। उस गलत ज्ञान को, उस रोंग पेंट को, वो गलत पेंट को हटाने के लिए रेगमार लगाना जरूरी है। ये रेगमार है, ये देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। और ये कहां से मुद्रित है? प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, तीसरा सकंद, और ये 123 पृष्ठ पे है। तुम भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा के विषय में जानकारी दे रहा है, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समृद्ध हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर है। अपने आत्माओं, अभी तक हम इन अन्य को भगवान माना करते थे, अब आपने अपनी आंखों से पढ़ा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नाशवान हैं और इनके माता पिता हैं, दुर्गा इनकी माता है। शिवपुराण रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6, 7, 8, 9 केंद्रीय प्रमाण है, ये काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है और दुर्गा इनकी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। तो प्रसंग जो चल रहा है वहीं आते हैं। मन तू सुख के सागर बसरे भाई, और न ऐसा यसरे, यानी छोटी मोटी सिद्धियां पाकर के जिनकी आज महिमा बनी हुई थी, हम उनको ऋषि महर्षि माना करते थे, वो अपने जीवन को व्यर्थ करके चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि कहते हैं भाई गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। सतगुरु तत्वदर्शी संत ना मिलने से वेदों के पढ़ को पढ़कर भी ये अज्ञानी बने रहे। ओह पुण्यात्माओं, ये ऐसा ज्ञान है, एक प्रसंग के ऊपर प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, पल पल में प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा आप एक भी बात नहीं सुन सकते, क्योंकि आपने लोक वेद सुन रखे हैं। लोक वेद किसे कहते हैं? दंत कथा। अब कहते हैं तत्वदर्शी संत ने मिला, ना ब्रह्मा जी को मिला, ना विष्णु जी को मिला, ना शिव जी को मिला। मिलने का तात्पर्य है कि वैसे तो परमात्मा आते हैं, ब्रह्मा जी को भी मिले, शिव जी को भी मिले, विष्णु जी को मिले, इनको पहला मंत्र भी दिया, लेकिन काल प्रेरणा के से इन्होंने वो मंत्र भी छोड़ दिया और आगे ज्ञान सुना नहीं परमात्मा का। क्योंकि कबीर परमात्मा तीन स्थिति में नाम देते हैं और तीन ही बार हमें नाम देने का आदेश उन्होंने दिया हुआ है। प्रथम बार में केवल पहला मंत्र हम आपको देते हैं और उससे आपका पता लग जाता है कि तुम जड़ पकड़ोगे या सूख जाओगे। यानी पौधा लगाते हैं तो उसको लाकर गमले में लगाया जाता है, गड्ढे में, तो अपने 10 दिन में पता लग जाता है ये सूखेगा चलेगा, तो फिर उसमें खुश होकर के सिंचाई की जाती है। तो पहले मंत्र से आपका पता चल जाता है, तुम 4-5 महीने के बाद आपको दूसरा मंत्र दिया जाता है तो पता चल जाता है कि ये भगवान को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। यदि फिर आप 4 महीने तक लगातार आ रहे हो तो परमात्मा बहुत सा सहारा भी आपको देना शुरू कर देगा, क्योंकि इस मंत्र में शक्ति बहुत है। उसके बाद आपको फिर सतनाम दिया जाता है जो 2 अक्षर का होता है और फिर सारनाम दिया जाता है। सारनाम थोड़ा समय लिया जाता है, आपके अंदर पूरी श्रद्धा उत्पन्न होने के उपरांत वो सारनाम दिया जाता है, अन्यथा वो काम नहीं करे आपके। अब क्या, जैसे अभी दास ने परमात्मा की उस अमर वाणी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी का एक श्लोक बोला था, एक मंत्र बोला था, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी काने। इस एक सेंटेंस को सुलझाने के लिए 3 दिन का सत्संग चाहिए, 3 दिन लगे इसमें। लेकिन आपको सत्संग बहुत बार दास ने सुना रखा है, इसलिए इसको थोड़ा शॉर्ट करके बताऊंगा, समय थोड़ा है। अब पहले तो ये देखना है कि कौन से राम के बारे में परमात्मा ने यहां जिक्र किया है। किस राम का, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनू तापम। तुम कौन से राम की भक्ति कर रहे हो जिससे तुम्हारे ये तीन ताप भी नष्ट नहीं हो रहे, इनका दुख भी समाप्त नहीं हो रहा। जैसे भगवान विष्णु को नारद जी ने श्राप दे दिया था, क्योंकि नारद जी शादी कराना चाहते थे, विवाह कराना चाहते थे। उनके मन में पहले तो ये अहंकार था कि मैंने इंद्रियों पर काबू कर लिया कि मैं अब विषय वासना के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, और दो घंटे पाछे ब्याह के लिए तैयार हो लिया। हिसाब से जीव का एक राजा के लड़की का स्वयंवर था, तो उसमें अच्छे बाजे गाजे बाजे थे, ये ब्याह के गीत इसे गुंडे हैं, किसी का ना दिल करता तो भी ब्याह कराने जी कर जाए। इस काल ने इसी बांध रखी व्यवस्था। तो नारद जी वहां शहर से गुजर रहा था, वहां ऐसे खूब साज बाज सजा रहा, खेर बैंड बाजे बाजे, लड़कियां गाने गावे। तो नारद जी के मन में आ गई, शादी कराऊंगा। शादी के लिए सोचा तेरी शकल इतनी है नहीं, चोटी चाटी रखवा रखी, बाल कटवा रखे, कदे लड़की तो स्वयंवर होता था, वो स्वयं अपना वर वरा करती थी लड़कियां। पहले ऐसा नियम था, अपने मनपसंद का पति वो चुना करती थी। तो उसने सोचा मैं भगवान विष्णु का रूप मांग लूं, फिर मेरा जल्दी ब्याह हो जाएगा। तो उसने ऐसा ही किया, भगवान से अर्ज की, विष्णु जी आए बोल के मांगते हो ऋषि जी कि मुझे आपका, मुझे हरि रूप चाहिए। विष्णु जी ने कहा तथास्तु, हरि माने बंदर भी हो से, तो बंदर का मुंह लग गया उसके नारद के। वो आकर बैठ गया स्वयंवर में, तो लड़की ने उसको वरा नहीं। कुछ देर के बाद एक दूसरे साथी ने उसको शीशा दिखा दिया दर्पण, कि अपनी शकल तो देख ले, अब मन डर लागे तेरे ते। तो उसने देखा वो तेरा गजब हो, ये तो बंदर बना दिया। तो भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मैं एक पत्नी के स्त्री के वियोग में आज मैं दुखी हुआ हूं, तू भी इसी प्रकार एक जन्म अपनी पत्नी के वियोग में बिताएगा। ये तीन ताप के अंदर आता है, कोई श्राप दे दे। उस श्राप को विष्णु जी टाल नहीं सके, श्री रामचंद्र जी के रूप में उत्पन्न हुए, राजा दशरथ के घर अयोध्या में, और फिर सारा जीवन अपनी पत्नी के वियोग में बिताया। और हम इस ज्ञान से पहले इस रामचंद्र ने राम मान रहे थे। इस रामचंद्र जी को, त्रिलोकी भगवान को, इस हम परमात्मा मान रहे थे, फाइनल गॉड। इस आध्यात्म ज्ञान था हमारा। ये तो परमात्मा कबीर जी की दया हुई हम दासों पर, आंख खोल दी मालिक नहीं तो रोना आवे कई बार ये परमात्मा। ईशान मोल मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाता, दाता आपका ज्ञान ना मिलता था। तो यहां परमात्मा कहते तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे ना तीनों तापम। एक बार युधिष्ठिर जी को बुरे बुरे स्वप्न आने लगे, महाभारत के युद्ध के बाद जब वो राजगद्दी पर बैठा, तो उसका समाधान के लिए वो भगवान, यानी बूढ़े बुरे बुरे स्वप्न, कटे हुए सर दिखे, मरे हुए आदमी दिखे, रात न डर कर बैठता, कपन सारा आंख फटी होगी न दिखे, रोटी खानी छोड़ दी। श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे, जब उनसे पूछा कि भगवान ये क्या कारण है हमारे भैया को ऐसे ऐसे बुरा हाल हो गया इसका, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो युद्ध में जीव हंसा की है, बंदूकघात किया है, वो तुम्हें दुख दे रहे हैं, वो भूत बन कैसे दे हैं तुम, वो कर्म दुखी दे रहे हैं। उसके लिए क्या समाधान है कि एक अश्वमेघ यज्ञ करो, उसमें एक शंख रखा जाएगा पांच मुख का, पंचायन पंच आनन, पांच मुख का एक शंख होगा, अलग से सुसज्जित स्टेज पर एक स्थान पर रखा जाएगा, और उसमें सभी पृथ्वी के, सारी पृथ्वी के जितने देवता हैं, ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, सबको यहां बुला लाओ, इस आमंत्रित करो, और सबके भोजन खाने के बाद वो शंख बजेगा, शंख बज गया तो तुम्हारी यज्ञ पूर्ण होगी, यज्ञ पूर्ण होगी तो तुम्हारे ये तीन ताप कटेगा, अन्यथा नहीं।